मेरे अजीज दोस्तों नमस्कार। आज 24 अप्रैल 2019 है और आज के इस afis.com के डेली ऑडियो लेक्चर में आप सभी का हार्दिक रूप से स्वागत है और आप सबके साथ ही मित्रों विशेष रूप से स्वागत है उन चार नौजवान साथियों का जिन्होंने एकेडमी की 10 से 24 अक्टूबर के बीच होने वाली क्लासेस के लिए अपने रजिस्ट्रेशन कराए हैं। इन दोस्तों के नाम हैं शिवानी कुमारी दरभंगा बिहार से, अरुण कुमार चौरसिया गांव भाई जिला सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश से, अतुल कुमार बाराबंकी उत्तर प्रदेश से और गौरव कुमार आपका गांव है सिंभावली जिला हापुड़ उत्तर प्रदेश से। फ्रेंड्स, आज के मुख्य विषय में मैं बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं और चूंकि दूसरी खबरें आज नहीं के बराबर हैं तो इस पर मैं बहुत विस्तार के साथ बात करूंगा। लेकिन इससे पहले आइए जो एक दो महत्वपूर्ण जो बातें मुझे आपको बतानी चाहिए पहले मैं वह बता देता हूं। श्रीलंका में अभी जो घटनाएं हुई, जो बम विस्फोट हुए जगह जगह, उसके बारे में आज के अखबारों में आपने पढ़ा होगा। उसकी जिम्मेदारी आईएस नामक संगठन ने ली है जिसका पूरा फुल फॉर्म है आईएसआईएस, राइट। आपको मालूम है इस संगठन के बारे में, आप लगातार सुन रहे हैं और खासकर जो अभी विश्व में आतंकवाद का जो सबसे बड़ा जो संगठन है, आतंकवादी संगठन, वो आईएसआईएस ही है। आपने इसके आसपास अभी यह भी पढ़ा होगा कि किस तरह से आईएस का जो सबसे बड़ा जो अड्डा था वो सीरिया ही था। देखिए, आईएस का जो एक एस है उसका मतलब सीरिया ही है, इस्लामिक स्टेट। आईएसआईएस का फुल फॉर्म है इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया, इस्लामिक स्टेट ऑफ इराक एंड सीरिया। जब आप नक्शे में देखेंगे तो आप इराक और सीरिया को बिल्कुल पड़ोसी राष्ट्र के रूप में पाएंगे, मतलब इस पूरे के पूरे क्षेत्र में इस्लामिक स्टेट की स्थापना होनी चाहिए, यह इनका उद्देश्य। कभी पुराने काल में ऐसा रहा है तो वो अपने उस पुराने गौरव को फिर से हासिल करने के लिए आतंकवाद का सहारा ले रहे हैं और इस्लाम की गलत व्याख्या करके लोगों को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये संगठन है, इसके बारे में आप बहुत अच्छे से जानते हैं और अगर नहीं जानते हैं तो एक ब्रीफ नॉलेज आपको होना चाहिए। आपको मालूम है कि किस तरह से सीरिया इनका सबसे महत्वपूर्ण केंद्र था और फिर अमेरिका के हस्तक्षेप के बाद अब लगभग लगभग सीरिया को आईएसआईएस से मुक्त करा लिया गया है। अखबारों में आपने पढ़ा होगा कि अब चूंकि आईएसआईएस अब सीरिया में रह नहीं गए हैं तो इनको अब नए केंद्रों की तलाश है। वैसे तो इनका नेटवर्क बहुत बड़ा है तो श्रीलंका में उन्होंने अंजाम दिया है और खासकर न्यूजीलैंड में जो चर्च में जो घटनाएं हुई थी जिसमें ईसाई धर्म के लोग मारे गए थे, ईसाई मारे गए थे, उसी का बदला लेने के लिए उन्होंने न्यूजीलैंड में मुस्लिम मारे गए थे तो उनका बदला लेने के लिए यहां श्रीलंका में उन्होंने ईसाइयों पर यह दुर्घटना ढाई ही है। एक छोटा सा तथ्य है जो कंटेंट के रूप में आपको मालूम होना चाहिए। दूसरी एक खबर के तहत, एक खबर नहीं है, आज के करंट कंटेंट में टाइम्स ऑफ इंडिया में एक आर्टिकल छपा था, उसका हिंदी वर्जन आपको प्रोवाइड किया गया था, वो है शैक्षणिक स्तर के साथ बढ़ती बेरोजगारी। तो जब आप इस पूरे आर्टिकल को पढ़ेंगे तो आपको एक थोड़ी सी नई सी चीज मिलेगी, नई इस मायने में कि अभी तक सामान्य तौर पर यह माना जाता था कि जो हायर एजुकेशन है उसके लिए तो सर्विसेज हैं लेकिन जो लोअर एजुकेशन है उसके लिए सर्विसेज की बहुत कमियां हैं बेरोजगारी की दृष्टि से। इस आर्टिकल में यह बताया गया है कि नहीं, हायर लेवल पर नौकरियों की बहुत कमी है, लोअर लेवल के जो एजुकेशन है यानी कि मिडिल स्कूल हाई स्कूल तक आप समझ लें, लोअर लेवल की जो मैं बात कर रहा हूं, उनके लिए नौकरियों की कमी नहीं है, उन्हें नौकरियां ज्यादा मिली हैं। ये एक फैक्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो मुझे लगता है कि इसी से संबंधित अगर आप एक दो लाइन इस पूरे के पूरे आर्टिकल को पढ़ने के बाद नोट कर लेंगे तो आपका काम चल जाएगा। आप यहां एक बात और भी कह सकते हैं कि सर आप ही हमें वो लाइन बता दीजिए, हम नोट कर लेंगे, पूरा आर्टिकल पढ़ने की तकलीफ हम क्यों करें। मैं यहां देखिए आपको इस तथ्य से भी अवगत करा दूं, जब आप पूरा आर्टिकल पढ़ करके और उसमें से एक लाइन नोट करते हैं तो मान करके चलिए कि वो एक लाइन लंबे समय तक आपके जेहन में मौजूद रहती है, आपको याद रहता है और उसकी पृष्ठभूमि भी आपको मालूम है। अगर मैं आपको एक लाइन बता देता हूं तो मान करके चलिए वो गायब हो जाएगा और आपको उसका पूरा कॉन्टेक्स्ट भी मालूम नहीं है। जब आप इस पूरे आर्टिकल को पढ़ेंगे तो इसके साथ आप दो तीन मिनट गुजारेंगे, चार मिनट गुजारेंगे और चार मिनट में आप एक लाइन हासिल करेंगे, वो ज्यादा स्थायी होगा। इसीलिए मित्रों, अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो प्लीज किसी शॉर्टकट पर भरोसा न करें, राइट। आइए अब मैं मुख्य विषय के बारे में बात करता हूं। मुख्य विषय का शीर्षक आप मान सकते हैं कि अब जो ईरान पर अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगाए हैं उसके क्या प्रभाव होंगे, और नो डाउट कि जब हम प्रभाव की बात करेंगे तो भारत के संदर्भ में सबसे ज्यादा बात हम करेंगे, और मैं खासकर इस टॉपिक को कैसे आपको तैयार करना चाहिए इसी को आधार बना करके चर्चा करने जा रहा हूं। दोस्तों अभी मैंने जो थोड़े से पैटर्न में अपने बदलाव किया है, मैंने आप लोगों से राय मांगी थी और मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि आप सब लोगों ने जो अभी पैटर्न में बदलाव किए गए हैं उनका समर्थन किया है, उसे बहुत ही वार्म तरीके से, बहुत ही गर्मजोशी के साथ उसका स्वागत किया है। तो फिलहाल मैं कुछ समय तक इसी पैटर्न को कंटिन्यू करूंगा, और मुझे लगता है कि शायद सबसे ज्यादा जरूरी भी है, क्योंकि स्टूडेंट मेहनत करते हैं, खूब पढ़ते हैं, रटते भी हैं, सच पूछिए तो वो अपनी तरफ से कोई कोर कसर उठा नहीं रखते, इसके बावजूद सफलता नहीं मिलती। कारण उसका यही है कि जिस तरीके से पढ़ना चाहिए उस तरीके से नहीं पढ़ पाते हैं। दूसरी बात, जो चीजें पढ़नी चाहिए वो चीजें नहीं पढ़ करके, जो चीजें नहीं पढ़नी चाहिए वो बेकार के चक्करों में पड़ जाते हैं। यह उनके पढ़ने की सबसे बड़ी कमी होती है और यही वो मार खा जाते हैं। तो मेरा उद्देश्य है कि मैं कम से कम उनके उस भटकाव से उन्हें बचा सकूं। यदि मैं ऐसा कर सका तो यह मेरे लिए बहुत बड़े आत्मसंतोष की बात होगी। उसी तथ्य को ध्यान में रख करके अब मैंने थोड़े से अपने पैटर्न में बदलाव किए हैं। मित्रों देखिए, ये जब हम इस पर तैयारी करते हैं तो सीधी सी बात है कि आपके इंटरनेशनल अफेयर का हिस्सा है, राइट। आपको चाहिए सबसे पहले कि आप इंटरनेशनल अफेयर्स के का जो आपका सिलेबस है उसे जाकर के देखें, क्योंकि आपको ईरान पर तैयारी करनी है। एक बार आप सिलेबस देखें, सिलेबस को आप ये मान करके चले किसी न किसी बहाने रोजाना एक बार आपको देख ही लेना चाहिए, और इसी तरह से किसी न किसी बहाने आपको अपने अनसॉल्व पेपर्स भी देख लेने चाहिए कि इंटरनेशनल रिलेशन पर क्वेश्चन किस तरीके के आते हैं, पहली बात। दूसरी बात, आप पाएंगे कि आपके यूपीएससी के सिलेबस में बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि हमें इस बात की जरूरत नहीं है कि आप ईरान या कह लीजिए कि इंटरनेशनल अफेयर में बिल्कुल एक्सपर्ट ही हो जाएं। हम आपसे उतनी ही अपेक्षा करते हैं जो किसी भी पढ़े लिखे व्यक्ति से अपेक्षा की जानी चाहिए। इसका मतलब हुआ कि आपको ईरान पर बहुत एक्सपर्ट वाली प्रिपरेशन नहीं करनी कि आप ईरान के इतिहास को पढ़ रहे हैं, ईरान में जो क्रांतियां हुई हैं उनको पढ़ रहे हैं, ईरान के जो युद्ध हुए हैं उनको पढ़ रहे हैं, ईरान की जो आर्थिक स्थिति है, राजनीतिक प्रणाली है उनको पढ़ रहे हैं। नॉनसेंस, ये बिल्कुल कोई अर्थ नहीं रखता। ये आपको बहुत ही सामान्य सी चीजें जाननी है, राइट। और फिर आप सिलेबस में यह बात भी बहुत स्पष्ट रूप से देखते हैं कि भारत के साथ संबंध क्या होगा या भारत पर उसका क्या प्रभाव होगा, वो सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। तो चूंकि देखिए अब आप इंटरनेशनल अफेयर की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही स्वाभाविक है कि आपको एटलस पलटना चाहिए और देखना चाहिए कि ईरान कहां है। जब आप एटलस उलटते हैं तो आपको पता लगता है कि जो ईरान है वो बेसिकली अफगानिस्तान से जब हम लेफ्ट की तरफ जाते हैं यानी कि पश्चिम दिशा में जाते हैं तो हमें ईरान मिल जाता है, और ईरान से ही सटे हुए दो देश हमें दिखाई देते हैं, वो है इराक और दूसरा है आपका सीरिया। पहले इराक पड़ता है और इसके बाद पड़ता है सीरिया, यानी इराक और सीरिया जो आईएसआईएस के गढ़ थे, जहां इतनी ज्यादा आतंकवादी घटनाएं हो रही थी, उनके पड़ोस में है ईरान। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। जब आप भारत के संदर्भ में सोचते हैं तो नो डाउट कि ईरान भारत का मित्र है। आप देखते हैं हम इतना तेल उससे आयात करते हैं, ये इफेक्ट आपको मालूम है, और फिर जो हमने चाबहार बंदरगाह बनाया है इतने लंबे समय से उस पर बात हो रही है वो भी आपको मालूम है। इसका मतलब है कि भारत और ईरान के संबंध बेहतर है, थोड़ी सी जानकारी आपको मिल गई, राइट। अब हम आते हैं कि ये वर्तमान समस्या क्या है। देखिए बहुत ही सिंप्लीफाई तरीके से मैं बताने की कोशिश कर रहा हूं और सब हेडिंग के साथ बताने की कोशिश कर रहा हूं कि आपकी प्रिपरेशन होनी किस पैटर्न पर चाहिए। ईरान के बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी मिल गई, अब हम जाने कि ईरान के साथ प्रॉब्लम क्या हुई है, क्या बात है। तो सीधी सी बात है कि अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है। तो अमेरिका ने प्रतिबंध क्यों लगाया, सिंपल सी बात है कि ईरान ने परमाणु हथियार न बनाने की संधि पर हस्ताक्षर किए हुए हैं, और अमेरिका को ऐसा लगता है कि ईरान में जो परमाणु संस्थान है, जैसे हमारे यहां भी हैं जहां हम ईंधन बना रहे, मतलब अपने एनर्जी बना रहे हैं, उसी तरह के एनर्जी के सेंटर्स ईरान के पास भी हैं। तो अमेरिका को ऐसा लगता है कि ईरान ने परमाणु अस्त्र बनाने की क्षमता प्राप्त कर ली है और वह वहां ऊर्जा के साथ साथ परमाणु अस्त्र भी बनाएगा, ठीक है। चलिए तो अब अमेरिका का यह कहना है कि आप अपने इन संस्थानों पर प्रतिबंध लगाइए या ओपन कीजिए या जो भी वो दबाव डालना चाह रहा है। ईरान जब उसे स्वीकार नहीं कर रहा है तो उसने ईरान पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध क्या लगा दिया, ये भी हमें फिर जानना होगा। प्रतिबंध यह लगाया कि जो भी ईरान के साथ व्यापार करेगा अमेरिका के साथ उसके संबंध खराब हो जाएंगे, अमेरिका उनके साथ व्यापार करने की सोचेगा। अब आप देखिए कि मामला अमेरिका और ईरान का है। पहली बात तो देखिए कि अमेरिका को यह अधिकार ही अकेले को नहीं है कि वो ईरान पर प्रतिबंध लगाए। अगर प्रतिबंध ही लगाना है तो ठीक है, हमारे पास एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ, वहां आप जाइए, वहां प्रस्ताव पारित कीजिए और संयुक्त राष्ट्र संघ को यह अधिकार दीजिए कि वो वहां प्रतिबंध लगा दे। लेकिन नहीं, अमेरिका थोप रहा है, अमेरिका की दादागिरी आपको दिखाई दे रही है। और सब ये जान रहे हैं कि ईरान पर प्रतिबंध अगर लगा ही दिया गया है क्योंकि ईरान तेल का बहुत बड़ा उत्पादक देश है, उससे तेल की सप्लाई कम हो जाएगी क्योंकि दूसरे देश ईरान से तेल खरीद ही नहीं सकेंगे। तो जब तेल नहीं खरीद सकेंगे तो बट नेचुरल है कि मार्केट में तेल की सप्लाई कम हो जाएगी, तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी। और जब तेल की कीमतें बढ़ जाएंगी तो याद रखिए इसका प्रभाव केवल, दुष्प्रभाव केवल भारत की अर्थव्यवस्था पर नहीं पड़ेगा बल्कि दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। तो आपको नहीं लग रहा है कि अमेरिका की बड़ी विचित्र किस्म की दादागिरी है कि वो दुनिया की अर्थव्यवस्था की परवाह न करते हुए केवल अपनी ही बात रख रहा है? इसीलिए आप देखेंगे कि इस मामले में अब हम पक्ष देखते हैं। अमेरिका तो एक तरफ है, ठीक है, दूसरे देश मजबूरी में ईरान पर लगाए गए इस प्रतिबंध को स्वीकार करेंगे, लेकिन एक दूसरा पक्ष है, चीन अमेरिका के इस कदम का साफ विरोध कर रहा है। चलिए हम मान करके चलते हैं कि चीन और अमेरिका की तो एक दुश्मनी है तो विरोध कर रहा होगा, यहां तक कि यूरोपियन यूनियन भी अमेरिका के साथ इस मायने में नहीं है, यूरोप के जो देश है आपके लिए वो भी इसके साथ नहीं है। हां, जो सऊदी अरब है वो अमेरिका के साथ है। सऊदी अरब अमेरिका के साथ क्यों? ये भी आपके दिमाग में बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देखिए जब हम युद्ध की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में तस्वीर तो साफ होनी चाहिए ना कि कौन कौन किस किस पक्ष में है। तो यहां अमेरिका और ईरान के बीच में अगर हम सब कहें कि चलिए कोल्ड वार चल रहा है तो हमें मालूम होना चाहिए कि अमेरिका के साथ कौन है। तो अमेरिका के साथ है सऊदी अरब। फिर आप नक्शे में देखेंगे तो वह भी आपको ईरान के नीचे ही दिखाई देगा सऊदी अरब। तो सऊदी अरब अमेरिका के साथ क्यों है? क्योंकि सऊदी अरब भी बहुत बड़ा तेल उत्पादक देश है, नहीं? और अगर ईरान से लोग तेल लेना बंद कर देंगे तो सऊदी अरब से लेंगे। सऊदी अरब को मौका मिल जाएगा कि वो अपने तेल की कीमतें थोड़ी सी बढ़ा दे और उसका लाभ बढ़ जाएगा, उसको इससे आर्थिक लाभ मिलेगा। तो बट नेचुरल है कि सऊदी अरब अमेरिका के इस कदम का बड़ा समर्थन कर रहा है, बल्कि सच पूछिए तो अगर उसे मौका मिलता है तो वह इसके बारे में उसे उकसाता भी है। तो मित्रों, ये फर्स्ट पार्ट है जो मैंने आपको बताने की कोशिश की है कि जिसे हम कहते हैं बेसिक समझ क्या होती है, कैसे बेसिक प्रिपरेशन तक आप पहुंचेंगे, उसकी जानकारी मैंने दी है। कल इसके मैं सेकेंड पार्ट पर आऊंगा। सेकेंड पार्ट मेरा यह होगा कि अब ये जो पूरा का पूरा जो घटनाक्रम हमें दिखाई दे रहा है सिविल सर्विस के लिहाज से किस प्रकार इस पर प्रश्न बन सकते हैं और वो जो प्रश्न बनेंगे उन्हें हम कैसे हैंडल करेंगे। आप पाएंगे कि सामान्य सी जानकारी के आधार पर बड़े आराम से इस घटना से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आप उनके जवाब दे देंगे, मुझे ऐसा मेरा विश्वास है, लेकिन कल के डेली ऑडियो लेक्चर को सुनने के बाद। तो दोस्तों, डेली ऑडियो लेक्चर के बारे में बस इतना ही। न्यूज़पेपर्स की क्लिपिंग्स मैं आप सबको प्रोवाइड कर रहा हूं, देख लेंगे। ईमेल लिखने वाले सभी दोस्तों को धन्यवाद देता हूं और उन्हीं में से 5 मित्रों के नाम हैं, के बी मीना, वैभव श्रीवास्तव मगहर उत्तर प्रदेश से, अभिलाषा शर्मा, मधुसूदन शर्मा भागलपुर से और मिर्जा कामरान बेग भिलाई छत्तीसगढ़ से। आप सबका भी बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और मित्रों, इसी के साथ ही अब आज के इस डेली ऑडियो लेक्चर को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहता हूं। नमस्कार।